अगला साल आ गया 1390। कितने साल थे मक्का में? 13 साल। अब हम मक्का दौर के बिल्कुल आखिरी दौर पे पहुंच गए। हज का मौसम आया, यसरब से बहुत से मुसलमान और मुशरिकीन हज के लिए। ये बहुत से के लफ्ज कहाँ से आ गए? मुसब बिन उमैर की तालीमात। एक टीचर गया और उसने कितनों को इस्लाम दिया। मुशरिकीन थे, हज वो भी करते थे, ये अलग बात है कि अल्लाह के साथ बुतों को भी पुकारते थे। खैर हुआ क्या कि अब मुसलमानों का दिल था कि अच्छा अब हम आए हैं तो हम नबी सल्लम को मिलना चाहते हैं। मदीना में रह के उन्होंने सिर्फ किस्से ही सुने थे ना कि मक्का में अल्लाह का नबी रहता है, तो उनके दिल में बड़ी ख्वाहिश थी। खैर उन्होंने कहा कि बस अब हम अपने नबी को मक्का में नहीं छोड़ सकते। जुमले सुनिए कि मक्का के पहाड़ों में चक्कर काटते, ठोकरें खाते और खौफ और हिरास के आलम में हम नबी सल्लम को अब नहीं छोड़ेंगे। उनको समझ आ रही थी कि मक्का वाले आपकी बेकदरी भी कर रहे हैं और आपके दुश्मन हैं, और 13 साल एक हद होती है। इनकी कान पे जू नहीं रेंग रही, तो चुनाचे इन्होंने खुफिया तौर पे अल्लाह के नबी से राब्ता किया। हज पूरा हुआ, यामे तशरीक जो हज के बाद के दिन है उसके दरमियाने रोज रात के वक्त जमरे उकबा के पास घाटी में एक मीटिंग हुई। सब वहाँ जमा हुए। मुकर्रर दिन पर यह इंतज़ार था कि सब लोग सो जाएं क्योंकि खुफिया मीटिंग थी। जब सो गए, ये भी जाके अपने लोगों के साथ डेरों में सो गए ताकि किसी को शक ना हो कि भाई आप किधर जा रहे हैं। जब रात का आखिरी हिस्सा शुरू हुआ, तिहाई हिस्सा गुजर गया यानी आखिरी हिस्सा शुरू हुआ, चुपके चुपके प्लान के मुताबिक एक एक दो दो करके अपने घरों से निकले और उकबा के पास जाके उस घाटी में जमा हो गए। 73 लोग थे। मुसब बिन उमैर की कोशिशों से 12 लोग 73 में बदल गए। 62 खजरज के 62 और 11 औस के थे। इस दफ़ा एक और इजाफा क्या था कि 2 औरतें भी थी। नसीबा बिनते काब बनु नजार से थी और असमा बिनते अमर बनु सलमा से थी। सब बैठ गए, अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए। आपके साथ आपके चचा अब्बास भी थे, हालांकि अभी कुफर पे थे। यहाँ नोट कीजिएगा, कुछ लोग खुद इस्लाम पे नहीं आते लेकिन इस्लाम के दुश्मन नहीं होते, जैसे अबू तालिब थे ना। अबू तालिब तो चले गए तो अब्बास ने बड़ा बनते हुए कहा कि मैं अपने भतीजे को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनका ख्याल क्या था कि अगर कोई मीटिंग हो रही है, कोई एग्रीमेंट हो रहा है, तो अल्लाह के नबी के साथ मुझे होना है। साथ गए। अब आप ज़रा इनकी बातें सुनिएगा। जब वो लोग बैठे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी आप हमारे साथ मदीना चलें, हम आपको मक्का में नहीं रहने देंगे। तो अब्बास की बात सुनिए, कहने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम और अपने शहर में इज्जत और हिफाजत के साथ हैं, बस अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम इन्हें जिस चीज़ की तरफ बुला रहे हो इसे निभाओगे और इन्हें इनके मुखालिफिन से बचा लोगे तो तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है इसे तुम जानो, वरना अभी से इन्हें छोड़ दो। दो टोक बात की कि जो जाने के बाद बुलाने के बाद जिम्मेदारियां हैं वो निभाओगे या रास्ते में छोड़ दोगे? ठीक है हम इस्लाम नहीं कबूल कर रहे लेकिन ये हमारा भतीजा है, हम इसके दुश्मन नहीं है, ये महफूज है, कोई इतना गिरा पड़ा नहीं है। इसके जवाब में फिर यसरब से आने वाले लोगों की नुमाइंदगी बरा बिन मारूर ने की। उन्होंने कहा हम सिद्क और वफा का और रसूलुल्लाह के लिए अपनी रूहें निछावर करने का इरादा करते हैं, बस अल्लाह के रसूल आप बात कीजिए और अपने लिए और अपने रब के लिए जो अहदो पैमान हो पसंद कर लीजिए। इससे क्या पता चलता है कि आप कहीं भी जाएं, क्या काम करें, पहले कमिटमेंट्स लें, क्योंकि दीन का काम जब शुरू नहीं हुआ होता 1000 बंदा तैयार होता है तैयारी करने के लिए। मीटिंग कॉल करेंगे तो 1000 में से 500 खुशी खुशी आ जाएंगे। मीटिंग्स का शौक होता है लोगों को, देखे क्या होने लगा है। पहली मीटिंग 500 की, दूसरी 400 की, तीसरी 300 की और आखिरी मीटिंग में बस वो 10-12 लोग रह जाएंगे जो वाकई जमने वाले होते हैं, जमाने लेते हैं। ये फितरत का असूल है। बूर बहुत लगता है लेकिन आखिर में फल बहुत थोड़ा बनता है। सब ने जब वादा कर लिया तो अल्लाह के नबी ने फिर उनसे गुफ्तगू की, आपने कुरान पाक की तिलावत की, अल्लाह की तरफ दावत दी, रगबत दिलाई, फिर अपने अल्लाह के लिए अहद किया, यानी आप देखिए तस्किया। अल्लाह के नबी का जो सबसे बड़ा काम होता था ना वो कुरान तरबियत थी। मुझे ऐसे लग रहा है इसको पढ़ते हुए कि जैसे हमारी कोई मीटिंग शुरू हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त थोड़ा हो या ज़्यादा कभी भी अल्लाह के जिक्र के बगैर मीटिंग नहीं शुरू करती मैं, जो मेरे कंस्टडी में होती हैं, बाकी आप लोग जो भी करते हैं मुझे नहीं पता। जाते ही बैठ के मौजू पे बात शुरू कर देना ये बरकत को ख़त्म कर देता है। हमेशा जब भी कहीं दीन के नाम पे बैठे एक जुमला, एक बात, एक आयत, कोई एक आज की बात करके बात शुरू करे अल्लाह की मदद होगी। देखिए अल्लाह के नबी कितनी खूबसूरत तरबियत करे उन साथियों की कि देखो तनहा उसकी इबादत करोगे, इसके साथ किसी को शरीक नहीं करोगे। अहले यसरब ने कहा कि हम किस चीज़ पर आपकी बैत करें, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो आपने कहा, चुस्ती और सुस्ती हर हाल में बात सुनोगे और मानोगे। इसको आज की जुबान में मैं पढूं, बीमार हो गए या सेहतमंद हो गए, हर हाल में बात सुनोगे और मानोगे। यही होती है ना, तबीयत सुस्त हो जाए या चुस्त, तंगी और खुशहाली हर हाल में माल खर्च करोगे। यानी जॉब मिले या ना मिले, तुम्हारा माल अल्लाह के रास्ते में लगेगा, क्योंकि दीन के लिए माल की जरूरत होती है। भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे, यानी इस काम के फैलाने में मददगार हो। अल्लाह के रास्ते में उठ खड़े होगे और इसके बारे में किसी मलामत घर की मलामत तुम्हें नहीं रोकेगी। गोया के तुम्हारे खानदान, बिरादरी, दोस्ते, सहेलियां, पीयर प्रेशर आएगा तो तुम पीछे नहीं हटोगे। और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो मेरी मदद करोगे, और जिस चीज़ से अपनी जान और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो, इससे मेरी हिफाजत करोगे। हाँ, इसके लिए तुम्हारे लिए फिर जन्नत है। यहाँ तो ये बड़े मुख्तसर लफ्ज़ है ना, बड़ी प्यारी डिटेल्ड ये बैते अकबा सानिया थी। इसकी डिटेल्स आपने सुननी हो तो रही को मखदूम के सेशंस में सुन के देख ले। बहुत नपी तुली बात करके अल्लाह के नबी ने लोगों के जहन तैयार किए। एक और रिवायत आती है कि आपने कहा कि हुकूमत के बारे में अहले हुकूमत से झगड़ा ना करोगे। यानी मतलब है कि तुम्हें पूरी तरह नबी सल्लम की लीडरशिप को कबूल करना पड़ेगा। इस पर बरा बिन मारूर, जो कि लोगों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थे, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, इस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हम यकीनन इस चीज़ से आपकी हिफाजत करेंगे जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं। बस आप हमसे बैत लीजिए, हम अल्लाह की कसम लड़ने वाले बेटे हैं। यानी फर्जंदाने जरबो हर्ब के हम तो लड़ाई के बेटे हैं और तलवारें हमारे हाथों में रहती हैं, हथियार हमारा खिलौना है, हमारी यही रीत बाप दादा से चली आई। एक शख्स थे अबुल हैसम बिन तेहान, उन्होंने बात काटते हुए कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे और कुछ लोगों के दरमियान अहदो बेमान की रस्सियां हैं और अब हम इन्हें काटने वाले हैं। गोया कि आपके आने से पहले हमारी किसी और ग्रुप से एफिलिएशन है, किसी और जमात को हम बिलोंग करते थे, अब हम उनको तोड़ देंगे आपकी वजह से। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ऐसा कर डालें फिर अल्लाह आपको गलबा दे तो आप हमें छोड़कर अपनी कौम के पास वापस आ जाएं? क्या उनका गम है? क्या आप हमारे शहर आ तो रहे हैं, लेकिन ये तो नहीं कि हम सारे पिछले ताल्लुक तोड़ के या उनको नाराज करके आपके पास आए, तो जब आपका मक्का फतह हो जाए या मक्का वाले दोबारा कह दें कि आ जाओ इधर, तो आप हमें तन्हा छोड़ दोगे? इस पर अल्लाह के नबी ने तबस्सुम फरमाया और कहा, नहीं, बल्कि खून खून है और बर्बादी बर्बादी है। मैं आप लोगों में से हूँ, आप लोग मुझसे हैं, जिससे आप जंग करेंगे मैं जंग करूँगा, और जिससे आप सुलह करेंगे मैं सुलह करूँगा। यानी अल्लाह के नबी ने उनको तसल्ली दी कि मैं तुमको छोड़कर वापस नहीं जाऊंगा। इस फैसला को लम्हे में अब्बास बिन उबादा आगे बढ़े, कहने लगे, आप लोग जानते हैं कि इनसे किस बात पर बैत कर रहे हैं? यानी आपको पता है ये कितना खतरा मोल ले रहे हैं आप अपने हाथ में? इनसे सुर्खों स्याह यानी सारे इंसानों से जंग पर बैत कर रहे हैं, क्योंकि उन हालात में नबी का साथ देना, वो कहते ना, भेड़ों के छज्जे में हाथ डालना था, सब आपके दुश्मन हो जाएंगे। इसलिए अगर आपको अंदाज़ा है कि अपने अम्वाल का सफाया कर दिया जाए और आपके अशराफ कत्ल कर दिए जाएंगे तो आप इनका साथ छोड़ देंगे, तो फिर इनको भी छोड़ दीजिए। कितनी दो टोक बात है, क्योंकि ये दुनिया और आखिरत की रुसवाई है। यदि आप अभी नई नेकी कर रहे कोई बात नहीं, लेकिन करते हुए छोड़ेंगे तो ये आपकी रुसवाई है। आपने इसका साथ दिया, बाद में छोड़ दिया, खड़े खड़े कदमों पे कह दिया मैं अब ये काम नहीं कर सकता, तो फिर अल्लाह आपसे पूछेगा। और अगर आप लोगों का ये ख्याल है कि माल की तबाही और अशराफ के कत्ल के बावजूद, यानी जब आजमाइशें आएंगी, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, फिर भी आप अहद निभाएंगे, तो फिर इन्हें ले लीजिए, क्योंकि ये वल्लाह ही दुनिया और आखिरत की भलाई है। यानी फिर इस नबी को ले जाए, और ये हम आपको भी बताते हैं कि फिर आपको दुनिया की भी खैर मिलेगी और आखिरत की। और ये सच साबित हुई बात, कोई यसरफ का नाम भी जानता था। अल्लाह के नबी गए तो मदीना, तो नबी बन के किस तरह दुनिया के नक्शे पे चला। और उन्होंने फिर लोगों ने कहा कि बिल्कुल, हम इन्हें माल की तबाही और अशराफ के कत्ल के खतरे के साथ लेते हैं। कितना जोश होता है, ये कहाँ से आता है? खरीदे जा सकते ऐसे लोग? पेड लोग ये काम कर सकते हैं? वल्ला ही नहीं कर सकते। ये वो करते हैं जिनको मिशन समझ आ जाता है, जिनको पता चलता है कि जितना हमारा लगेगा हमें मिलेगा, इस राह में हमारा खपना, हमारे कोई बचने की उम्मीद है, हमारी कब्र का अजाब बच जाएगा और अल्लाह ताला शायद हमारी यही नेकी कबूल करके हमें जन्नत दे दे, वरना तो हम पता नहीं नफ्स की ख्वाहिशात में किधर चले जाए। कहा अल्लाह के नबी, ये सब हम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? कहा आपने फरमाया, इसके बदले में जन्नत मिलेगी। ये तो नहीं कहा कि इस पे तुम्हें इतनी पे मिलेगी, पैसे मिलेंगे ले लो। पैसे लेने के लिए दीन के काम थोड़ी करने हैं, फिर तो बंदा कहीं ऐसी जगह जाए पैसे मिले। दीन के काम पे पैसे मिलेंगे भी कितने, और मिल भी गए तो क्या वो उसका बदला दे सकते हैं जो उसके बदले में इंसान को काम कर रहा होता है। तो ये तो एक ऑनर है, ज़रूरत के किसी को भी मिल जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जो लोग पैसे के लिए दीन के जगहों पर आते हैं ना, वो कभी नहीं चलते। 1-2 महीने की खेल है, ख़त्म, खेल ख़त्म। वही बंदा आगे तक जाता है जिसको ये मिशन लगा होता है। खैर, लोगों ने कहा अपना हाथ फैलाएं, अल्लाह के नबी ने हाथ किया। सोचे कैसा मंजर होगा, इतना मैं तो इसको एंजॉय कर रही हूँ, आप लोग तो इन मरलों से नहीं गुजरते ना। लेकिन ऐसे साथियों की बातें, यहाँ भी जब आई थी सब साथियों से दिल खोल के बात की थी कि कोई ढकी छुपी बात ना रह जाए, क्योंकि ये अल्लाह के रास्ते मुश्किल रास्ते होते हैं। जहाँ भी जाएं लोगों को बताएं, लेकिन जोश इतना होता है लोगों के अंदर। मैं सोचती हूँ अब थक गए होंगे, इतना काम करके अब मीटिंग में बैठे हैं, अब ये कह देंगे नहीं उस्ताद साहब और कुछ नहीं करना, लेकिन फिर जोश होता है, फिर नए सिरे से जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी का मकसद समझ आता है। बहरहाल बैत हुई, अल्लाह के नबी के हाथ के ऊपर आपका हाथ हजरत असद बिन जुरारा ने पकड़ लिया। यानी अल्लाह के नबी का जब हाथ आया तो एकदम असद बिन जुरारा ने कहा ठहर जाओ, कौन थे ये भला, पहले होस्ट है मदीना में, किसके, कौन गया था मदीना से टीचर बन के, मुसब बिन उमैर इनके घर रहे, सबसे पहले ये मुस्लिम हुए थे उनमें से। खैर, इन्होंने कहा अहले यसरब ज़रा ठहरो, हम आपकी खिदमत में ऊँटों के कलेजे मार कर, यानी लंबा सफ़र करके इस यकीन के साथ हाजिर हुए हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। आज आपको यहाँ से ले जाने के मानी ये हैं कि सारे अरब से दुश्मनी, अपने चीदा सरदारों का कत्ल और तलवारों की मार। अब अगर आप ये बातें बर्दाश्त कर सकते हैं तो इनको ले लें, और आपका अजर अल्लाह पर है। और अगर आप लोग अपने मुतल्लिक़ कोई अंदेशा रखते हैं तो इनको अभी से छोड़ दें, यह अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा काबिल उज़र होगा। यानी और लोगों को वॉर्न किया कि देखो जिम्मेदारी बहुत है, अभी नहीं लोगे ना तो अल्लाह को कह देना, अल्लाह अभी हालात नहीं थे। एक दफ़ा नबी के साथ लग गए तो पीछे हटोगे तो फिर अल्लाह की पकड़ से नहीं बचोगे। लोगों ने कहा असद अपना हाथ हटाइए, वल्लाह ही हम इस बैत को ना छोड़ सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। इसके बाद एक एक आदमी ने उठकर बैत की, और रिवायतों के अंदर आता है कि पहले बैत करने लगे खुद असद बिन जुरारा ही थे। कुछ कहते हैं अबुल हैसन थे, कोई कहते हैं बरा बिन मारूर थे। और औरतों से जो बैत हुई थी वो हाथ से नहीं हुई थी, जुबान से हुई थी, यानी अल्लाह के नबी ने उनसे शेक हैंड नहीं किया था। इतना कीमती डॉक्यूमेंट इस वक्त साइन हो रहा है, बैत मुकम्मल होती है। अल्लाह के नबी ने लोगों से तलब किया कि अपने आप में से 12 सरदार बनाओ। यहाँ से अब आप देखिए काम करना सिखाया जा रहा है, ग्रुप थी उसमें से अब एक टीम बन रही है। 12 लोग अपनी कौम के निगरान होंगे जो इनके मामलात के जिम्मेदार होंगे, 9 खजरज से और 3 औस से, क्योंकि आने वालों में तादाद भी खजरज की ज़्यादा थी, तो वहाँ से सरदार बना। इससे भी पता चलता है कि ग्रुप्स बन रहे हैं और उनके लोगों के मिजाज के मुताबिक बन रहे हैं। खजरज के जो लोग सरदार या ग्रुप लीडर या जिम्मेदारान थे, उनके नाम साद बिन उबादा, असद बिन जुरारा, साद बिन रबी, अब्दुल्ला बिन रवाहा, राफे बिन मालिक, बरा बिन मारूर, अब्दुल्ला बिन अमर, उबादा बिन सामित और मुनजर बिन अमर थे। और औस कबीले के जो सरदार थे, उसैद बिन खुजैर, साद बिन हसमा और रुफाया बिन अब्दुल मुनजर थे। बाज़ अबुल हसम का नाम भी इसमें कहते हैं कि आया था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि आप लोग अपनी कौम के सारे मामलों के कफ़ील हैं, जिस तरह हज़रत ईसा के हवारी थे कफ़ील, तो मैं अपनी कौम यानी मुसलमानों का कफ़ील हूँ। यानी गोया कि इन 12 को उन सब 73-4 के ऊपर हुक्मरान बना के यहाँ से कामों की मैनेजमेंट समझ आ रही है। हेड का हेड ये काम पे लग जाए ना, काम नहीं होता। हर बंदे को अपना काम, अपना वक्त, अपनी जगह पता होनी चाहिए, फिर काम अच्छी तरह होते हैं। बहरहाल ये लोग वहाँ से उठे, सब ने हाँ की। तो ये दूसरी बैत उकबा थी जो अल्लाह के नबी की ज़िंदगी की सबसे अजीम और अहम बैत थी। इसकी वजह से वाक़यात का रुख भी बदला, तारीख बदल गई, बैत पूरी हुई। लोग बिखरने वाले थे कि शैतान को पता चल गया कि अंदर एक खुफिया मीटिंग हो रही है। उसने ऊंची आवाज़ से मक्का में ऐलान शुरू कर दिया, खैमे वालों देखो क्या मोहम्मद से ना निपटोगे, इस वक्त बेदीन इसके साथ हैं, वो तुमसे लड़ने के लिए जमा हो रहे हैं। अल्लाह के नबी को आवाज़ अल्लाह ने सुनवा दी, तो आपने कहा अल्लाह के दुश्मन मैं तेरे लिए जल्दी फारिग हो रहा हूँ, और लोगों से फरमाया कि अपने अपने डेरों पर चले जाएं। ये वापस अपने ठिकानों पर जाकर ऐसे ही सो गए जैसे कि लोगों को लगा कि उठे ही नहीं थे। और सुबह हुई, जब सुबह हुई तो कुरैश ने इस पर एहतजाज के लिए अहले यसरब के खेमों का रुख किया। لیکن مشرکین یثرب نے کہا کہ یہ باطل خبر ہے، ایسی کوئی بات ہوئی کوئی نہیں، ہم تو سب یہاں سوئے ہوئے ہیں. یعنی شیطان نے کوشش کی تھی کہ پروگرام اوپن ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا، اور اس طرح سے جو یثرب سے آئے ہوئے لوگ تھے وہ واپس چلے گئے. کچھ لوگوں نے پیچھا کیا تو سعد بن عبادہ اور منظر بن عمر کو الزاخر کے پاس جا کے پکڑا، لیکن منظر بن عمر جو تھے انہوں نے ان کو بے بس کر دیا اور نکل بھاگے. سعد پکڑے گئے، ان کو باندھ کر مارتے ہوئے بال گھسیٹتے ہوئے مکہ لے جایا گیا. یعنی ابھی آزمائش آ گئی، ابھی بیعت کر کے اٹھے ہیں تو اسلام کی وجہ سے پہلی ہی چوٹ لگ گئی. خیر مکہ میں آئے، لیکن متم بن عدی اور حارث بن حرب نے ان کو چھڑا لیا، کیونکہ وہ ان کے قافلوں کو مدینہ میں جگہ دیتے تھے جب کبھی یہ تجارت کے لیے آگے جاتے تھے. خیر انصار نے ارادہ کیا کہ مکہ پر حملہ کریں کہ انہوں نے ہم پر ہاتھ کیوں ڈالا ہے، لیکن حضرت سعد آتے دکھائی دیے کہ سب ٹھیک ہے، تو پھر اس پہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. تو یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اب ایک قسم کا مکی دور پورا ہو گیا. اب آگے ہم ہجرت کی راہیں پڑھیں گے اور کیا حالات تھے، کس طرح سے یہ سب ہوا. ایک ایک چیز یقین کرے کہ ایمان دینے والی ہے. مل رہا ہے آپ کو ایمان؟ ابھی بھی اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم اس میں ڈسکشنز کریں اور کمنٹس لیں، لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آج ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں تو اپنے دلوں کو جما لیں. یہ ہے مشکلات کا راستہ، یہ کانٹوں کا راستہ ہے، لیکن اس کے آگے جنت ہے. یہ گھر چھوڑنے، بچوں کو لانے، چھوڑنے، دینے، کرنے میں کتنی قربانیاں دیتے ہیں تو علم کا کام ہوتا ہے نا، اور دین کا کام ہوتا ہے. تو یاد رکھے کہ بدلہ جنت ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی آپ کو، آپ کو سیرت سنا رہی ہے. آج یہ قربانیاں نہیں لوگ دے سکتے، اس لیے نہیں جمتے. آپ ایک درس کراتے ہیں، آپ خود دیکھتے ہیں کہ ایک ایک پروگرام میں 200-250 لوگ آ کے آرام سے بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جب جم کے سنجیدگی کے ساتھ علم اور مستقل بنیاد پہ، کمٹمنٹ سے لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں تو جمنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اصلاح کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.